cafeína.
Só com o é, cana?
Oi, custo cafeína.
Cujo tá chão?
Pisi, cujo não.
Cujo cafeína? Cujo te acho?
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज़ अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारी गुलरुख हैं और फेसबुक लाइव पर हमारे साथ हैं वर्दा खलील। और ये नाम बताने से मकसद ये है कि आप में से जो भी फेसबुक पर हमारे लिए मैसेजेस करेंगे, इस प्रोग्राम में हम साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे। एक पुराना वादा था आपसे, जब हमने फ़िल्म यलगार के तकरीबन तमाम कास्ट से आपकी मुलाकात करवाई थी, तो उसमें सना बुच्चा और आर्मीना खान से गुफ्तगू महदूद सी रही थी, तो आज हम दोबारा उसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं झलक एक उस फिल्म की।
मैं जरूरत इस दुनिया की, इस मुल्क की जरूरत हूं।
जो मेरे मुल्क के लोगों पर हमला करता है, उसकी हैसियत सिर्फ एक तिरंदे जैसी है, और इस फौज को तिरंदों से लड़ना आता है।
आपको कुछ गलत फील नहीं हुआ अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठाते हुए?
मेरे खून का हर कतरा इस मट्टी की अमानत है।
हमने बहुत मेहनत करनी है, अपनी फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए।
जलाल, इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हैं? या हाथ नहीं रोकने?
खुदकुशी क्यों करते हैं बड़ा? तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं है।
तो सामीन, ये फिल्म है यलगार, और हाल ही में पाकिस्तानी जो सिनेमा है उनमें रिलीज। तो सामीन, अब हमने कुछ बात तो की थी, यानी तफसीली बात हुमायूं सईद से और अदनान से और इसी तरह आयशा उमर से, तो थोड़ी सी झलक उसकी सुनते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बड़ी चहल पहले कमरे में। अदनान साहब के हाथ में टेलीफोन है इस वक्त, ये किसके पास है?
जी जी, मेरे हाथ में।
अच्छा, तो चलिए आपकी नई फिल्म की तरफ। और यलगार आपकी फिल्म है जिसके प्रमोशन के लिए आप सब आए हुए हैं, तो पहले तो थोड़ा सा हमें तारुफ करवाइए कमरे में जो जो लोग हैं आपके साथ इस वक्त।
जनाब, मेरे साथ इस वक्त आयशा उमर है, सना बुच्चा है, मायूस सईद साहब है।
अदनान, आपने कर्नल का किरदार अदा किया है इस फिल्म में,
लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान का कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। आप देखेंगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कहीं कहीं पाया जाता हूँ फिल्म में। हसन वकार राना पहले जो वार थी उसके प्रोड्यूसर थे
जी।
इसके अंदर ये सब कुछ है।
अच्छा,
इसके अंदर ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है, DOP भी है, कंपोजर भी है, सॉन्ग राइटर भी है, एडिटर भी इसके अंदर खुद ही है वो।
आज का दिन हमें दुनिया और दुश्मन को ये बताना है कि लफ्ज़ मुजाहिद के असल मायने क्या है।
इस मुल्क का बादशाह उससे लेकर सिपाही तक सोने से पहले अपने रब को याद करे ना करे, अगर दूर जान को याद जरूर करे।
जैसे कि सना ने अभी बात की बताई कि के लिए सारी लॉजिस्टिक लेना, तो जैसे हम देखते हैं कि अक्सर फिल्मों में छोटे से टुकड़े लगा देते हैं इधर उधर से और साफ पता लगता है पेवंद उनमें, तो अगर आप लोग हकीकतन उन जगहों पे जा सकते हैं और वहाँ पे फिल्म बना सकते हैं, तो ये तो बड़ी बात है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए।
अब मैं आप फोन दे रहा हूँ हुमायूं को।
जी,
आप उनसे बात कर लीजिए।
जी जी,
अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, आपके तो इतने चाहने वाले हैं, बल्कि आप सभी के इस कदर आप सब मकबूल हैं, लेकिन मैंने सुना ये है कि आपका
अमेरिका में किसी को जानती है चाहने वाला?
मुझे तो ये पता है बेशुमार, लेकिन इस दफा आपका रोल जो है मनफी।
मैं जरूरत इस दुनिया इस मुल्क की जरूरत हूँ।
पहली दफा आप इस तरह का किरदार कर रहे हैं या इससे पहले कर चुके हैं कोई आप?
जी मैं इससे पहले जब मेरी पहली फिल्म आई थी इंतहा
जी
आज का दिन हमने दुनिया और दुश्मन को ये बताना है कि लफ्ज़े मुजाहिद के असल मायने क्या है।
इस मुल्क का बादशाह उसके लेकर सिपाही तक सोने से पहले अपने रब को याद करे ना करे, अगर दूर जान को याद जरूर करे।
अब मैं आप फोन दे रहा हूँ हमाइयों को
जी,
आप उनसे बात कर लीजिए।
जी जी
सलाम अलैकुम।
जी सलाम अलैकुम हमारे साहब।
सलाम अलैकुम
हमारे साहब, आपके तो इतने चाहने वाले हैं बल्कि आप सभी के इस कदर आप सब मकबूल हैं, लेकिन मैंने सुना ये है कि आपका
अमेरिका में किसी को जानती है चाहने वाला
मुझे तो ये पता है बेशुमार, लेकिन इस दफा आपका रोल जो है मनफी।
मैं जरूरत इस दुनिया इस मुल्क जरूरत हूँ।
ये पहली दफा आप इस तरह का किरदार कर रहे हैं या इससे पहले कर चुके हैं कोई आप?
जी मैं इससे पहले जब मेरी पहली फिल्म आई थी इंतहा
जी
उसमें मैंने किया था एक कैरेक्टर, वो नेगेटिव था लेकिन इतना नेगेटिव नहीं था जितना इस फिल्म में। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है तुम्हारे कैरेक्टर में, तो मैं बोलता हूं यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मैंने इसमें इतना नेगेटिव कैरेक्टर किया जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया।
यानी आप टेररिस्ट बने हुए हैं इसमें?
जी हाँ, मैं बहुत खतरनाक गंदा किस्म का टेररिस्ट।
अच्छा,
गंदी हरकतें करने वाले।
देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन
मैं जरा कथा कलामी कर रहा हूँ। मैंने हमाइयों का काम देखा, अदनान बात कर रहा हूँ, और हमाइयों ने अपने रोल के साथ बहुत ही इंसाफ किया है, और बाकायदा एक देख के नफरत आती है किरदार को देख के।
हाँ जी आती है, मुझे खुद भी आ रही थी, यकीनन आएगी, लोगों को नफरत हो जाएगी मुझसे। आई होप कि सिर्फ किरदार से हो, मुझसे ना हो। और फिल्म के में दिखाया गया किस तरह ये आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ये आर्मी ऑफिसर्स की जो कुर्बानियाँ, जितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं।
सर जरा लोकेशन तो चेक करें।
नेगेटिव स्ट्राइक टीम आसिफ, डोंट इवन थिंक अबाउट इट।
आई वांट रिपोर्ट इमीडिएटली।
This is no longer an extraction
of all channels.
इस सीरियस की फिल्म है ना, उससे कहीं ज्यादा नॉन सीरियस हम लोग हैं।
हम लोग
ने इतना मजा किया है ना सेट के ऊपर कि वो पता नहीं, आई होप कि हमने ये फिल्म में सीरियसनेस इतनी ज्यादा थी कि आई थिंक हमें नॉन सीरियस होना पड़ा टू सर्वाइव। सो या वी ऑल हैव ग्रेट फन।
ये आयशा उमर भी हैं साथ, और अरमीना भी आ गई हैं, सना तो बीच बीच में बात कर ही रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, सबकी बातें सुन रही हूँ। एंड आई अग्री जो सबने बोला है, बिल्कुल। आप पूछिए मुझसे।
तो आयशा, आप इस फिल्म में एक पश्तून लड़की हैं, तो मतलब आपका वैसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ज़बान से या पश्तून कल्चर से ताल्लुक है, या पहली दफ़ा आपने इस तरह का रोल किया?
नहीं, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, और इसमें कोई लैंग्वेज भी, हमारी बेसिकली जो लैंग्वेज है फिल्म की वो उर्दू और इंग्लिश है। तो किसी भी जिस रीजन के लोग हैं वहाँ की कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं बोली। बेसिकली ये लड़की, जैसे सवात ऑपरेशन पे ये बेस्ड है फिल्म, मैं सवात में रहती हूँ, मेरा कैरेक्टर जो है जरमीना का
जी।
और अब क्योंकि फिल्म सिर्फ 2.5 घंटे की है, तो उसमें सब कैरेक्टर्स की स्टोरीज और बैक स्टोरीज नहीं पता चल सकती, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ, वजाहत कर देती हूँ। तो ये रहती है वहाँ पे, एंड वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है वो जो एक चंक ऑफ पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती है, स्पेशली द फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन द रूरल एरियाज, जिनको समझा जाता है कि वो बहुत सप्रेस्ड हैं, और कोई किसी किस्म की फ्रीडम नहीं है कुछ करने की या कुछ बोलने की या एक्सप्रेस करने की। तो बेसिकली उनको एम्पावर करने के लिए और उनकी इमेंसिपेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड वो एक लड़की है ऐसी जो मतलब उसके बाप ने उसको पढ़ाया है, तो वो पढ़ के आई है, और वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है विद समवन बचपन से, जिसका उसके साथ मतलब आई थिंक मंगनी हुई भी है या कुछ, लेकिन उनकी दोस्ती है एंड देन फैमिली की भी है, शादी कर रही है, एंड देन उसके साथ क्या होता है और वो किन सर्कमस्टांसेस में का सामना करती है।
एक दिल याद ना
سامعین یہ تو کچھ گفتگو تھی جو آپ پہلے سن بھی چکے ہیں اور کچھ ہم نے مزید چیزیں اس میں بڑھائی ہیں, لیکن اب ہم آپ کو بات چیت سناتے ہیں ثنا بچہ سے. اس سے پہلے فیس بک سے کچھ میسیجز پڑھ دوں اور ایک آدھ کالرس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. اسما چٹھا نے لکھا ہے کہ میں نے یہ مووی دیکھی تھی, بڑی پروڈکشن کمال کی تھی, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو کیسے فروغ دیا گیا. بہرحال میں بہت ہی روئی مووی دیکھ کر. اسما چونکہ میں نے فلم نہیں دیکھی اس لیے میں تبصرہ نہیں کر سکتی اس پر, لیکن ضرور یہ اس کے بنانے والے اور جو اداکار ہیں ان سے جب بھی بات ہوگی آپ کا یہ سوال ضرور پوچھوں گی. توصیف شوقی, پیرزادہ عارف, سیف اللہ, شیخ تنویر, عابد رضا, اختر عالم, ان سب نے بھی تبصرے کیے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ٹوبر ٹیک سنگھ سے اقبال, ان اقبال سے بات کرتے ہیں. جی اسلام علیکم اقبال صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی
میں آپ کے پروگرام سارے سنتا ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ سب سامعین کو میری طرف سے بہت بہت سلام.
آپ ذرا فلم پر اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں, ویسے وعلیکم السلام ہم سب کی طرف سے, لیکن آپ کچھ فلم کے بارے میں یا اس پروگرام کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟
ہاں یہ فلم میں نے دیکھی نہیں ہے, میں گاؤں میں رہتا ہوں.
اچھا آپ کا بھی میرے ہی والا حال ہے, تو چلیے بہت شکریہ فون کرنے کا. اور اختر حسین ہے خوش آپ سے. جی اختر حسین صاحب. وعلیکم السلام. جی 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 آپ کی. اختر صاحب آواز بہت ہی خراب, یہ ٹیلی فون لائن ہمیں ملی ہے, معاف کیجیے گا, کیا تھوڑا اور واضح بولیے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل ہمایوں صحیح, تو ہمارے بہت سارے جی. ثنا بچہ سے ہم آپ کے ابھی ملاقات کرواتے ہیں, تو چلیے ثنا بچہ سے بات چیت جو پہلے سے ریکارڈیڈ ہے اس کا کچھ حصہ سنیں. ثنا آپ کو تو کچھ مشکل ہی پیش نہیں آئی ہوگی, کیونکہ جو آپ ہیں وہی آپ فلم میں کر رہی ہیں.
بالکل بالکل وہی کر رہی ہوں, اور جو میرے ساتھ ہو چکا ہے وہی ہوا.
یعنی
وہ ایک میں کہتی ہوں ہم بات کرتے ہیں نا قربانیوں کی, تو یہ کوئی ریئلائز نہیں کرتا اور یہ اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی کتنی قربانی دیتی ہے کہ اگر وہ کوئی کریئر پرسو کرتی ہے. مطلب میں نے بہت لیٹ شادی کی, اپنی پوری زندگی کریئر کو دے دی, اور مطلب یو نو کریئر کو ہی ہمیشہ فوکیت دی. تو یہ لڑکی جو اس میں دکھائی گئی ہے تو وہ بھی یہی کرتی ہے, مطلب اصولوں کی جنگ لڑنا اور ایسے مطلب دلیری والے کام کرنا. یہ مطلب میرا بھی خاصا رہا ہے. تھوڑی سی ظاہر ہے کہ یہ لڑکی جو فلم میں دکھائی گئی ہے ذرا زیادہ مطلب باہر کہیں کام کرتی ہے اور کافی جگہ جا چکی ہے, وہ میرا ابھی لیول نہیں ہے, لیکن ہاں مطلب اچھا لگا اور میرے اپنے کردار سے بہت قریب تر تھا. تو وہ جو قربانی کا ایک جذبہ ایک ہوتا ہے نا آپ کے اندر کہ آپ نے مطلب اپنے کریئر کو یا اپنی ہستی کو آپ مٹا دیتے ہیں اپنے کام کے پیچھے, اس کے بعد آپ خوش نہیں ہوتے, لیکن آپ مطلب ایک لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, لیکن اتنی اونچائی پہ پہنچ کے کبھی کبھار کوئی کمی سی رہ جاتی ہے. اس فلم میں جو ایک لڑکی کی اپنے جذبات ہوتے ہیں کیسے کمی سی رہ جاتی ہے, کسک سی رہ جاتی ہے, وہ ایک فیلنگ بڑی نمایاں رہی ہے. مطلب کہ جتنی مرضی آپ آگے سے اسٹرانگ بنے جو بھی رہیں, لیکن آپ اصل میں آپ ایک ہیومن ہوتے ہیں اور آپ ظاہر ہے ایموشنلی مطلب بالکل جیسے ایموشنلی ٹون ہو جاتے ہیں دل اور دماغ کے بیچ میں. تو آئی تھنک یہ مجھے بہت اچھا لگا. سوری
تو اب آپ نے جو اب بات کی, آپ کہتی ہیں کہ ایک جگہ پہنچ کے کسک سی رہ جاتی ہے, یہ آپ اپنی حقیقی زندگی کی بھی بات کر رہی ہیں نا؟
دیکھیں ہر چیز مطلب آپ اس وقت نہیں سوچتے ہیں زندگی میں, مطلب ہم بہت دفعہ سوچتے نہیں ہیں. ہمارے والدین ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو اب شادی کا ایک وقت ہوتا ہے. میں نے اپنی کریئر کو بہت سیریسلی لیا ہے. مطلب میں اپنے کریئر کے آگے کسی چیز کو میں نے کبھی فوقیت نہیں دی, ماں باپ کو نہیں دی, تہواروں کو نہیں دی. مطلب مجھے اب تک یاد ہے کہ میں یو ایس الیکشنز کر رہی تھی پچھلے دفعہ, اور میں ان کی ایگزیکٹو پروڈیوسر تھی, تو مجھے یو ایس سے چیزیں کوآرڈینیٹ کرنی ہوتی تھیں اور لائیو شوز جا رہے ہوتے تھے, اور میری خالہ کی ڈیڈ باڈی دبئی سے آئی تھی, اور میں آدھے گھنٹے کے لیے جا کر اپنی ماں کو دیکھ کر آئی تھی, اور ان کی تدفین پہ بھی نہیں جا سکی تھی پوری طرح سے کیونکہ کام اتنا ضروری تھا. زندگی میں صرف مر جانا ہی قربانی نہیں ہوتی. ہماری جو ایک جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, وہ آئی تھنک ابھی تک کسی پر بھی عیاں نہیں ہوا ہے. مطلب آپ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اچھا جی اس سے پیسے لے لیے اور اس کے آگے بک گیا, کے بعد بھی ایک حقیقت ہے. مطلب ایسی جگہوں پہ جانا, اور میں سوات میں گئی تھی اس وقت.
اچھا.
تو ایک بہت ڈرونا خوف, مطلب وہ فیلنگ آپ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے. यू नो आप खून में लथपथ लाशें देखते हैं, आप औरतों की यू नो लाशें टंगी हुई देखते हैं, और ये मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद मेरे ऊपर क्या गुजरी। लेकिन उस वक्त आपको एक लाइव प्रोग्राम करना था और मैंने किया, तो मैं कह रही हूँ कि मैंने जो अब ये थोड़ा सा करियर में अपनी थोड़ी सी तब्दीली लेकर आई हूँ, इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत इमोशनली टैक्सिंग हो गया था मेरे लिए। मतलब सहाफत आसान नहीं है, एंकरिंग बहुत मुश्किल है। मतलब आपको एक प्रेशर में काम करना हर वक्त, मतलब कभी पानी में डूब डूब के सैलाब के अंदर कवरेज कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, और पता है ये लोग समझते हैं कि यू नो कि ये आसान है, इसके बड़े पैसे मिलते हैं, इसके साथ बड़ी फैसिलिटीज आती हैं। लेकिन आप अगर यकीन जानिए कि अगर आप नेक नियति से काम कर रहे हैं, और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, मैं बहुत सारी लड़कियां जो इस फील्ड में आई हैं, और मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे कोई मिलके कहता है कि मैंने आपको देख के इस फील्ड में आई, मैं तो मुझे बहुत खुशी होती है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ सना कि जो औरतें आती हैं, सिर्फ ये सहावत तो ज़ाहिर है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे पैरोल पर आप होते हैं तो आपको ज़्यादा बढ़ के अच्छा दिखाना होता है ना खुद को, तो उनको तो हर वक्त खुद को बहुत अच्छा दिखाना होता है ये साबित करने के लिए कि वो बराबर हैं, तब भी बमुश्किल उन्हें बराबर समझा जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मतलब मेरा आप सोचिए ना, बहुत बहुत मुश्किल होता है, और सिर्फ एक अकेली लड़की जिस चैनल में ये लोग होते थे सारे आदमी, और इतने ज्यादा मंझे हुए सहाफी, और उनके सामने मुकाबला करना या उनसे मुकाबला करना या कम से कम उनके लेवल पर भी आना, और मैं नहीं समझती कि मैं कभी भी आ पाई। लेकिन हाँ, मैंने अपनी एक नीश जरूर क्रिएट की, उसकी मुझे बहुत खुशी है, और इस फिल्म ने मुझे एक और जाविया दिया चीज़ों को समझने का, और मैं समझती हूँ इस फिल्म करने के बाद बहैसियत इंसान मैं बहुत तब्दील हुई हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कोई करियर पर कैसा लेगा या मैं एक्टर बन जाऊंगी, नहीं, मुझे सिर्फ ये लगता है कि हर एक्सपीरियंस आपको तब्दील करता है।
आप एक्टिंग करती रही?
नहीं, पहला और मेरा ख्याल आखिरी ही होगा पर मैंने बस ये टीवी छोड़ा था, फिल्में बनाने लगी थी, अभी भी मतलब माशाल्लाह फिल्म बना रही हूँ, प्रोडक्शन में आ गई थी, अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था, फिर मैंने क्वेटा जैसी एक फिल्म बनाई जिसके ऊपर हमने बहुत सेंसर बोर्ड का मसला आया और हमने उसको रिलीज नहीं की, लेकिन वो एक आर्ट फिल्म थी। तो मैं मीनिंगफुल काम करना चाहती हूँ और करूँगी, तो बस ये फिल्म जब आई, मुझे जब इसका मौका मिला, उसके बाद उन्होंने कहा आप प्रोडक्शन भी कीजिएगा, तो मुझे सीखना था कि मुझे कभी मैंने फिल्म नहीं बनाई थी पहले, और मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा चलें एक में काम करूँगी, जब कैमरे के इस तरफ आके देखूँगी तो मुझे आइडिया होगा कि ये कैसा होता है। तो ये मैंने अपने वाकई अपने पर्सनल फायदे पर्सनल मफाद के लिए किया।
लेकिन सना एक ऐसी जगह जहाँ आप पहले आपने एक बहुत ही हौलनाक वक्त में आके उस वहाँ देखा लोगों को, उनकी जिंदगियों के बारे में बताया या हालात की रिपोर्टिंग की आपने, तो अब जब आप आई तो उस सवात में और इस वक्त के सवात में नजर आया बहुत वाज़ेह फर्क आपको?
मैं बताऊं कि मैं स्वात नहीं गई थी, स्वात में मेरे कोई सीन्स ऐसा सच नहीं थे, तो हमने कुछ जगहों को इमिटेट किया है स्वात, और वो जगहें इतनी डरावनी जाहिर है क्योंकि वो एक यू नो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, आपको पता होता है कि चीज़ आपके हाथ में है, तो वो बहुत फ़र्क है। लेकिन अभी मैं स्वात हाल ही में होकर आई हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत बहुत वाज़े तब्दीली है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है। आई थिंक ये फ़ौज को अब वहाँ से निकल जाना चाहिए, ये मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है, और मुझे लगता है कि तासुर जो ग्राउंड पे भी यही है लोगों का कि अब उनके हाथ में चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कुछ ऐसे वजूहात होंगी जिसकी बुनियाद पर वो अभी तक वहाँ पर हैं, और आई एम श्योर हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को अपनी रेट वहाँ पे मनवानी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना करो।
तो स्वात में मैं आपसे गो के फिल्म से हट के पूछ रही हूँ, लेकिन अब आप हैं वही बात है कि आप फिल्म में भी तो सहाफ़ी हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वात एक ऐसी जगह थी जो वाली सवाद जो थे वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर समझे जाते थे, और जहाँ पे लड़कियों की तालीम यानी तालीम लड़के और लड़की दोनों की 100% हुआ करती थी, तो क्या वो स्वात वापस आया? अब वैसा है स्वात या अभी तक डरे?
मेरा ख्याल है ऑपरेशन और मलाला के इंसिडेंट के बाद बहुत बहुत डर है लोगों में, बहुत खौफ है लोगों में, और देखें आप ये भूल रही हैं कि एक ऑपरेशन के दौरान वो सारे तमाम स्कूल, मतलब मैंने तो देखे हैं, खत्म, बिल्कुल मतलब हर चीज खत्म, तो उसको रीबिल्ड होने में टाइम लगेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होने में वक्त लगेगा, और ये मतलब ओवरनाइट नहीं होगा, ये सालों में होगा। बहुत सारे लोग तो वहाँ से चले भी गए हैं और यू नो अपनी कहीं और पे उन्होंने ठिकाने बना लिए हैं। मैं इतनी फैमिलीज को जानती हूँ जो स्वात से अब या तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं या कहीं और चली गई हैं, तो ये कहना कि हाँ वो हम दोबारा से उसी तरह चले गए हैं तो अभी प्रोग्रेशन से काफ़ी दूर है, अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो हमें थोड़ा सा मतलब परेशान कुन لمحات میں سے ایک ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ سوات میں ابھی جائیں گی تو میں زیادہ نہیں کہوں گی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی نیگیٹو. پرابلمس تو ہیں اینڈ اٹس ناٹ آل ویل, لیکن ان شاء اللہ میری امید یہی ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور ان شاء اللہ ٹھیک ہوگا.
تو پتہ نہیں یہ سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے یا نہیں, لیکن کیونکہ آپ لوگوں کی ٹیم ایک دوسرے سے اتنی جڑی ہوئی ہے اور آپ لوگ سب ایک دوسرے سے مجھے لگتا ہے بات بھی کرتے ہیں, تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئی ایس پی آر کا صرف اتنا ہے کہ وہ سہولت دیتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں لاجسٹک کے لحاظ سے, تو کیا اس میں کسی طرح سے ان کا ہولڈ ہوتا ہے کسی چیز پر کہ فلم ساز کیا دکھانا چاہتا ہے اور اسے کیا نہیں دکھانا چاہیے؟
کسی چیز کو کریکٹ کرنا ان کا حق ہے کیونکہ انہی پر بنائی گئی ہے, ان سے پوچھ کر بنائی گئی ہے, کیونکہ سوات آپریشن کی ڈیٹیلز بہت کم لوگوں کے پاس ہیں اندرونی حالات کے بارے میں. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو تبدیل بھی کیا گیا ہے کیونکہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر پوری بات بھی نہیں بتائی جا سکتی. آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کیونکہ بطور ایک صحافی یہ سوات آپریشن کو کور کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے بہت سارے آئی ڈی پیز کی بات کی تھی, میں نے لوگوں کی نقل مکانی کے اوپر بہت سارے پروگرامز کیے تھے, لیکن ہم نے ایک بھی شو کسی افسر کے شہید ہونے پر نہیں کیا تھا. ہمارے لیے صرف باڈی کاؤنٹ ہوتا تھا کہ اتنے شہید ہو گئے اس دن اور اتنے شہید ہو گئے. اتنا نقصان ہوا ہے فوج کا سوات آپریشن میں, اور مورال بوسٹنگ ہوتی ہے, مورال کے ریزنز ہوتے ہیں تو نہیں بتایا جا سکتا. مطلب میں ہر سین میں روئی ہوں, اور میں نے جب اسکرپٹ پڑھی تھی تب میں روئی ہوں, اور میں بہت ایموشنل عورت ہوں اس لیے میں بہت روتی ہوں ہر چیز پہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب آپ کو بہت اچھی لگے گی, ظاہر ہے کہ آرٹ میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے, نتھنگ از پرفیکٹ ان آرٹ, آئی مین اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, آئی ایم شیور اس فلم کو بھی ہزاروں طرح سے امپروو کیا جا سکے گا. اور یہ جو شہید آپ کو نظر آئیں گے اس فلم میں, یہ ایکچوئل اسٹوریز ہیں, ایکچوئل لوگ ہیں, یہ انہیں کی کہانیاں ہیں, تو یہ بالکل سچ پہ مبنی ہے. یہ شان کی فلم یا ثنا بچہ کی فلم یا نان کی فلم یا ہمایوں کی فلم یا ارمینا کی فلم نہیں ہو سکتی, یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کی فلم ہے, اور اسی لیے اس میں آپ کو بہت سارے کردار نظر آئیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو,
بہت شکریہ, خدا حافظ. سامین, کچھ ثنا بچہ سے گفتگو آپ نے سنی, ہمارے کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں. ملک حسین صاحب ہیں آزاد کشمیر سے. جی ملک صاحب,
السلام.
وعلیکم السلام. ان کا اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے, فون ہی کٹ گیا. طارق جختائی صاحب, طارق صاحب.
جی جی جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام طارق صاحب. کیونکہ یہ پروگرام ہم نے پہلے سے ریکارڈ کیا تھا شکتائی صاحب, تو وہ اس وقت ساتھ تو نہیں موجود, لیکن یہ ریکارڈنگ ہے میرے پاس, لیکن آپ جو بات پوچھیں گے میں جواب دے سکتی ہوں آپ کو. جی بتائیے. ہاں,
اس فلم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اچھا ٹیلنٹ ہے, یہ جوائنٹ ایفرٹ تو ہے, لیکن اچھا ٹیلنٹ ہے اگر ان کی کچھ سرپرستی کی جائے نا, تھوڑی فلم انڈسٹری کی, تو یہ اس فلم کی طرف بہت اچھی فلم ہے پاکستان میں بن سکتی.
جی ہاں بالکل,
مورال
بالکل
آرمی کا اور ٹیررزم کے, ایسی فلموں کی ضرورت تھی.
آپ نے یہ فلم دیکھی طارق صاحب؟
جی میں نے کچھ دیکھی ہے, لائٹ چلی گئی تھی.
اچھا اچھا اچھا, تو اصل میں بات وہی ہے ساری کہ میسج بھی ہونا چاہیے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں تو بہت ہی اچھی فلمیں بنتی تھیں اور ایک دور تھا, لیکن وہ ختم ہو گیا اور اس میں شدید مقابلے کا سامنا نہیں کر سکتی, بہت سی وجوہات لوگ بات کرتے ہیں. چلیے اللہ دیتا شاکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی اللہ دیتا صاحب, اللہ دیتا شاکر صاحب کا غالباً فون کٹ گیا.
آواز آ رہی ہے؟
جی جی جی, کیا فرمائیے آپ.
ہاں میں ابھی جو پوچھ رہا تھا ثنا بچہ جی,
ऐसे काफी हम उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, तो जो वो फिल्म बनाने जा रही हैं तो बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तो इसके लिए दिल और गुर्दे की जरूरत होती है। यकीनन हम उनको खराज तस्वीर पेश करते हैं और आपको भी खराज तस्वीर पेश करते हैं कि आप ऐसे स्टार्स को, ऐसे फनकारों को, ऐसे कलाकारों को अपने प्रोग्राम में मधु करती हैं।
बहुत शुक्रिया अल्लाह देता है शाकिर साहब आपका
जी करती हैं।
और बहुत शुक्रिया। और सना बुच्चा की तरफ से मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सहाफ़ी के ऐसे से भी बहुत सारी दुश्वारियों का मुकाबला किया और बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, तो यकीनन फिल्म बनाना भी उनके लिए कामयाब तजुर्बा होगा। चलिए एक आर्मीना खान जो हैं एक और फनकार, उनसे भी कुछ गुफ्तगू हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिल्म का एक गाना।
अमीना को फोन मैं दे रही हूँ और मैं यही कह रही हूँ कि जितनी भी आई थिंक ऑल द वुमेन इन द फिल्म वो पाकिस्तान के में मुख्तलिफ जो वुमेन मैं कहूँगी जो कैरेक्टर्स हैं वो सब रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान की एक डिफरेंट टाइप की औरत को। यू नो सना इज रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्न एजुकेटेड वर्किंग वुमन, मेरा कैरेक्टर है वो रूरल एरियाज वो वाली औरतों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्मीना का कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग अनदर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। तो सारी खवातीन के कैरेक्टर्स बड़े थॉट आउट है। और अब मैं दे रही हूँ अर्मीना को।
जी अस्सलाम वालेकुम अर्मीना, कैसी हैं आप?
मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं।
पहले तो आपसे पूछूंगी कि वैसे अपनी हकीकी जिंदगी में एक्टिंग के अलावा आप क्या करती हैं?
जी मेरा एक बिजनेस है मैनचेस्टर में, एक अदद प्रॉपर्टी का, तो वो दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ माय टाइम, तो वो मेरी डे जॉब है जिसे बोलते हैं। बाकी जो है जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, कोई अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने को मौका मिलता है तो मैं जरूर जाती हूँ उस पर।
तो आप वैसे रहती हैं मैनचेस्टर में?
जी मैं मैनचेस्टर बेस्ड हूँ।
जी
एक्चुअली मेरा स्टार्ट जो था वो एक इंडिया की फिल्म से लिया था मैंने। इन 2012 में मेरा शूटिंग शुरू हो गई थी। उससे पहले मैं छोटी मोटी मॉडलिंग कर रही थी और मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरे पास एक बिजनेस की डिग्री है।
फिल्म कौन सी थी जो आपने कहा इंडियन फिल्म से शुरू हुआ?
जी उसका नाम था एक्चुअली इट वाज अ क्रॉसओवर, लंदन और इंडिया के कोलैबोरेशन थी, उसका नाम था इट्स टू मच।
अच्छा।
वो फिर मेरे पाकिस्तान आने के बाद रिलीज हुई कुछ 6 महीने के बाद, जो मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की यहाँ पर। लेकिन जब उसका उसकी खबर फैली कि एक पाकिस्तानी नजाद लड़की ने जो है इंडिया में फिल्म साइन कर दिया, तो मुझे फिर पाकिस्तान से ऑफर आना शुरू हो गई और मैंने फिर अपना पहला ड्रामा साइन किया। और फिर उसके फौरन बाद के बाद मैंने बिन रॉय को ज्वाइन किया, जो कि मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। यलगार वॉज माई सेकेंड और जनान वॉज माई थर्ड।
तो इसमें आपका किरदार? आपकी हुई पाकिस्तान की एक नई फिल्म यलगार के फनकारों से। हमारे और भी बहुत से हमारे साथ हैं फेसबुक पे लोग, लेकिन इस वक्त अब वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है तो आइंदा किसी प्रोग्राम में मज़ीद आपसे बातें होंगी और बहुत से आपके पैगाम भी हम पढ़ेंगे। शहनाज अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए, गुलरुख हमारी प्रोड्यूसर थी, हम सब की तरफ से खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।